अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो समंदर के बराबर और गहरे गुनाहों को मिटा देता है। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और सुबह खैर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कर चुके होंगे हमारे और आपके अपने प्रोग्राम के साथ सुबह जिंदगी के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम जी, अस्सलामुअलैकुम।
सलाम करता हूं आपकी खिदमत में भी, अपने प्यारे पर नाज़रीन की खिदमत में भी। सिर्फ ये है कि आपके इलाके में क्यों काली घटाएँ सी छाई हुई हैं, कुछ अंधेरा अंधेरा सा आपके पर छाया हुआ, पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो है, जो क्या कहते हैं, हमारे प्रोग्राम से जो है आपकी तरफ एक ब्राइट किस्म की रोशनी भेजेंगे ताकि आपका आज का दिन जो है वो और बहुत। और देखें मेरी शक्ल, जरा देखें आप कैमरे में, ऐसा जल सारी सनलाइट जो है वो मेरे ऊपर पड़ रही है।
खुर्रम भाई का चेहरा बहुत नूरानी हो रहा है।
बिल्कुल नूरानी ये लाइटों की। बहरहाल जी, सिर्फ ये बताता चलूँ कि नाज़रीन, आप लोग हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा वेबसाइट का पेज जो है नीचे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और आपको पता है हमारा फेसबुक जो है facebook.com/SUT Morning Show हमारा जो है फेसबुक का पेज है, जो अभी रुबाब के हाथ में लाइव ऑनलाइन वो देख रही हैं आपके कमेंट्स। तो आप आज के प्रोग्राम के बारे में जो जो बात करना चाहते हैं, हफ्ते का मौजू क्या है, हमारा हफ्ते का मौजू
सब
जी सब के बारे में जो भी आप बात करना चाहते हैं वो हमें बताएं, फ़ोन के ज़रिए बताएं और जिस तरह भी आपका जी चाहता है।
जी खुर्रम, मैं यहाँ पता चल रहा हूँ हमारे जो एक बहुत ही वफ़ादार और बहुत ही अच्छे व्यूअर जो है एजाज हुसैन साहब ने सुबह सुबह हमारे को जो है मैसेज भेजा है, और उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि वो फजर की नमाज़ के बाद ही सहार का चैनल ऑन कर लेते हैं। पहले तो वो तमाम रिप्ले प्रोग्राम जो होते हैं हमारे चल रहे होते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हमारा लाइव शो देखते हैं, और फिर नाश्ते में हमारी जो जगह है वो बिल्कुल यानी जो मिस करते हैं हमें नाश्ते के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें याद रखते हैं, दुआओं में भी हमेशा हमें याद रखिएगा। जी
बिल्कुल, ये जो लेने बात की फजर की नमाज के बाद मज़ा आ जाता है, यकीन माने कि नमाज पढ़ के आप कोई भी अपना काम शुरू करें उसका अपना एक मज़ा होता है। और बहरहाल बुजुर्ग कहते हैं, मुझे नहीं पता इसमें जो है क्या इसके पीछे कितनी वो हकीकत है या किसी अथेंटिक जगह से भी बात हुई है, कहते हैं कि फजर की नमाज के वक्त अल्लाह ताला जो है रिज्क बांटता है। ये बहुत से लोगों से आपने ये बात सुनी होगी,
और मौला कायनात का भी इस पर फरमान है कि जब सुबह की किरणें जो पड़ रही होती हैं दुनिया के ऊपर दुनिया पर
जमीन
पर जी रिज्क बांटने का वक्त होता है, तो उठो और अपनी रिज्क अपने हाथ में लो।
और यकीन माने ऐसा ही होता है, जिस दिन आप फजर की नमाज बाकायदगी से आराम से पढ़ पाए उसके उस दिन आपके काम, आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब में आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं।
एक खास एनर्जी से मिलती है इंसान को फजर की नमाज के बाद। एक तो आप देखिए पहले ही सुबह उठ के फ्रेश हो जाते हैं, फिर वो जो देर तक सोने वाली बात होती है जिससे मैं और सुस्ती से लेके आती
है। बिल्कुल सारी बात, आप जितना सोते हैं उतना ही वो जो है सारी बात धूप निकल आती है। पर तो ये बातें जो है हमारे से ज्यादा आप लोगों को बेहतर पता है। सिर्फ ये होता है कि एक बार कोशिश करने की जरूरत होती है, सुस्ती को इधर उधर करने की जरूरत होती है, और उसके बाद जो है देखें
तो फिर हम अपने नाज़रीन को बोलते हैं नाज़रीन थोड़ी सी सुस्ती को दूर कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमेशा से हम आपके मैसेजेस और कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमेशा से हमने कहा है कि आपके मैसेजेस के बगैर हमारा प्रोग्राम कुछ अधूरा अधूरा थोड़ा सा फीका सा पड़ जाता है, तो हमारे प्रोग्राम में थोड़ा जान डालने के लिए हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में हमें ज़रूर बताइए कि आपके क्या नज़रात है, आपके क्या ख्याल है, तो फिर आप किस तरह हमसे रबते में सकते हैं, आइए इस वक्त के दौरान जरूर देखते हैं। जी नाज़रीन, को दोबारा खुश आमदीद कहते हैं वो तमाम रास्ते, वो तमाम तरीके जिससे आप हमसे रबते में रह सकते हैं, अब वो चाहे प्रोग्राम के दौरान हो या प्रोग्राम के बाद। आपने मुलायजा देख लिए हैं आपने, और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे रबता ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, हमेशा से हम बताते चल रहे हैं कि हमारे कुछ नए सेगमेंट्स शुरू होने वाले हैं, अब उसमें कुकिंग शो भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास जो भी हुनर है या आपको आइडिया हो कि आपको क्या सीखना है, आपको किस मौजू के बारे में अच्छा लगता है कि हम बात करें, तो आप ज़रूर हमें बताइए। हमारे को बहुत हमें बहुत खुशी होगी इस बारे में कि आप जो हमसे मौजू शेयर करेंगे, तो हमारी ये पूरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी जो ख्वाहिशात हैं या जो आपको पसंद आ रहा है हम उस बारे में ज़रूर बात करें और उसके मुतालिक कुछ प्रोग्राम्स बनाएं। जी खुर्रम, आज के मेहमान क्या?
मेहमान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मेहमान जो है हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार होंगे, डेंटिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं वो अपनी, और जो ओरल हाइजीन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यानी मुँह की सफाई सुथराई, दांतों की सफाई सुथराई, इसका दांतों का ख्याल रखना, उसके बारे में डॉक्टर हमारे से बात करेंगे। सब्र के बारे में मैं एक बात करना चाहता था, और रुबाब एक सवाल सा है, देखते आप नाज़रीन से भी पूछते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि देखें अक्सर ऐसा होता है कि हम एक लाइन में खड़े हुए होते हैं, और बैंक की लाइन हो गई, कहीं भी मुर्गी खरीदने की लाइन है, जो भी है, और जो है देखते हैं आपके लोग, एक आध बंदा जो है आगे से अंदर लाइन में आ गया। अब आपके ख्याल में यहाँ पर हमें सब्र करना चाहिए या नहीं? सवाल
सही
पहला सवाल है
जी, मेरे ख्याल में तो करना चाहिए,
सब्र करना चाहिए,
क्योंकि देखिए एक बंदे के आगे निकल जाने से मेरे ख्याल से, या एक बंदा भी 2 मिनट हमसे जल्दी इसका काम अगर हो जाए तो क्या हो जाना है।
अच्छा, ये अलबत्त खैर इसके इसका जो इसका जवाब जो है हमारे नाज़रीन देंगे।
बिल्कुल
नाज़रीन आप बताएं कि रुबाब ठीक कह रही हैं या मैं, मेरा ये ख्याल है कि नहीं। देखें मेरे ख्याल में आपने हक़ से नहीं गुजरना चाहिए,
सही,
और वो आपका हक है कि आप लाइन पे खड़े हुए हैं, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो आगे लाइन
लेकिन
में जाए।
फौरन देखिए आपकी बात ठीक है, हक पे रहने की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो
जी
सकता है उस बंदे को उस वक्त कोई मसला पेश आ रहा हो,
ठीक
शायद
है,
उसका कोई अजीज बीमार जो
बिल्कुल
हॉस्पिटल में
यही
हो।
यही बात मैं अभी करना चाह रहा
बिल्कुल
था। और बात ये थी कि आप जब देखते हैं कि कोई शख्स आपकी लाइन के आगे से अंदर आ गया, या आपको ऐसे लगता है कि वो
बिल्कुल
परेशान है, तो वो अगर लाइन में आ गया है
ठीक,
तो तकरीबन 4 से 5 सेकंड, 10 सेकंड तक उसको दें,
बिल्कुल
ताकि आप देखें तो सही उसका मसला क्या है।
बिल्कुल
हो सकता है कि वो पहले से लाइन में हो और
सही,
वो गया हो कि पानी पीने, टॉयलेट गया हो, कोई काम उसे आ गया हो, या
बिल्कुल
ये है कि वाकई जैसे आपने कहा कि कोई मुश्किल, बहुत संजीदा मुश्किल उसके साथ आ गई हो, तो
सही
ये चीज़ें इनको देख के उसके बाद। अक्सर औकात ऐसा होता है, मेरे साथ खुद
जी
ऐसा हुआ है
जी
कि मसा इस तरह कोई लाइन में आ जाता है, या कोई ऐसा एकदम से जो है आगे आ जाता है बंदा, तो उसको मैं जो है फ़ौरन बोल देता हूँ कि भाई साहब मेरी जो है मेरी बारी है, तो
सही,
वो मसा फ़ौरन बोलता है कि नहीं यार मैं जो है पहले से खड़ा
पहले
हुआ
से
था, तो
था
उसका
यहाँ पे
उसने बंदे को बड़ी शर्मिंदगी होती कि यार मैं
ठीक,
1 सेकंड ठहर जाता तो मुझे पता
तो
चल जाता कि ये बंदा जो है पहले से आया हुआ है, या इस बंदे का क्या मसला था। तो
बिल्कुल
ये थोड़ा सा
ये
सब्र
फिर से
यहाँ
वही
पर
बात आ जाती है सबर के ऊपर, कि सबर यहाँ पे कितना है जो अपना अहम किरदार
अहमियत है,
निभाती है, और
बिल्कुल
हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए नाज़रीन कि जाने बिना और कुछ समझे बिना हमें ये काम नहीं करना चाहिए और
बिल्कुल
किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए।
बेशक।
जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारा वक्त हुआ है इस्फ़हान चलने का, साथ मिलकर देखते हैं इस्फ़हान से क्लिप, और फिर आपकी खिदमत में डॉक्टर विवेक कुमार के साथ हाजिर होते हैं।
शहर के मुसाफिर अजीज नाजरीन, हम टांगे पर सवार मैदान नक्शे जहाँ के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है हमें जैसे कि हम पूरी दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। नाजरीन, यह है मस्जिद इमाम, या जिसे शाह मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद सफ़वी दौर हुकूमत में इस्लामी तर्ज तामीर का एक और दरख्शां सितारा है। इस मस्जिद को बनाने वाले हुनरमंद इस्लाम की राह पर अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहते थे। इस मस्जिद में आने के बाद हर एक सयाह तफक्कुर और इबादत पर मजबूर हो जाता है। عزیز ناظرین، ہم مسجد امام کے ایک ایسے نقطے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مؤذن اذان دیتے تھے اور ان کی اذان کی آواز پورے مسجد میں گونجتی تھی۔ عزیز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ناظرین، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں۔ آپ نے یہ ویڈیو کلپ اصفہان سے دیکھی۔ اگر ناظرین آپ ٹورسٹ ہیں، آپ کا ایران آنا ہوتا ہے، تو آپ اصفہان ضرور جائیے گا۔ ایران کا ایک تاریخی شہر ہے، بہت بہت خوبصورت عمارتیں یہاں پہ۔ امید ہوگی آپ کو ضرور ضرور پسند آئے گی وہاں کی سحر۔ جی، چلتے ہیں خورم کے پاس۔
بہت بہت شکریہ رباب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن اصفہان کے علاوہ بھی کچھ شہر ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے ہم بات کریں گے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، جیسے جس میں یزد آ جاتا ہے، شیراز آ جاتا ہے، بڑے اہم شہر ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ان کے پر بھی بات کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ناظرین، اور جیسے کہا کہ ہمارا جو موضوع آج رہے گا وہ اورل ہائیجین رہے گا، منہ کی صفائی ستھرائی، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آج جو ہے بچوں کے اوپر فوکس کریں گے تھوڑا سا۔ ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سحر ٹیم کے سبھی سدسیوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں ناظرین کا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں کی جو منہ کی صفائی ہے یا ان کے دانتوں کا خیال جو ہے کیسے رکھا جائے؟
دیکھیے، کسی بھی چیز میں، جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو عمارت سالوں سال چلتی ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر بچے جو ہوتے ہیں وہ بعد میں جا کر کے بڑے ہوں گے تو وہ بنیاد ہیں، اگر اس ٹائم پر سوشل، مینٹل یا فزیکل ان کے ویلفیئر پہ دھیان دیا جائے،
ٹھیک ہے،
تو وہ تاعمر ان کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منہ کی بھی دیکھ بھال کرنی بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، بچپن سے ہی دیکھ بھال کرنا کافی اہم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ بہت سارے پرابلم ہو جاتے ہیں، سمسیا آتی ہیں منہ کے پرابلم سے ہونے سے۔ منہ کے پرابلم سے یہ نہیں ہے کہ کیول منہ تک ہی سیمت رہے گا، پورے باڈی پہ اس کا اثر پڑتا ہے، پورے شریر پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔
جی، یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے دانت برش نہ کیے ہوں یا منہ آپ کا صاف نہ ہو تو پیٹ کی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہے حقیقت اس میں؟ صحیح، ٹھیک۔ جی جی ڈاکٹر صاحب،
تو ایسا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ بچوں کے دانتوں کی دیکھ بھال کے بارے میں اور منہ کی دیکھ بھال کے بارے میں وستار سے ذکر کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے دانت ہیں، پھر یہ دودھ کے دانت ہیں، پھر نئے دانت آ جائیں گے، پرماننٹ ٹیتھ آ جائیں گے، تو ان کی دیکھ بھال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے،
لیکن ایسا ایکچوئل ہوتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اگر جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ٹیتھ کے لیے جگہ بچا کے رکھتے ہیں، کہ جو پرماننٹ ٹیتھ آتی ہیں وہ نمبر 20 ہوتے ہیں نمبر،
ٹھیک ہے،
جو سب سے شروع میں ہوتے ہیں، سامنے والے دو دانت آتے ہیں، نیچے کے جبڑے کے سامنے والے دو دانت آتے ہیں، اور 2.5-3 تک سارے کے سارے دانت آ جاتے ہیں، مطلب پرائمری ٹیتھ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، 2.5-3 تک، ایسا کہتے ہیں 6 مہینے میں، ہر 6 مہینے میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں کیسے صفائی کریں، اگزامپل دیں ان کو، خود بھی ان کے ساتھ برش کریں،
ٹھیک ہے،
پھر صاف کپڑے سے ان کو، کپڑے سے، نرم کپڑے سے ان کے دانتوں کو صاف کر لیا کریں،
ٹھیک ہے،
یہ کافی اہم ہے۔ تو اگر ایسا کرنے سے انہیں جو کیڑے لگیں گے اور کیڑے نہیں لگیں گے اور دانتوں کی سمسیا نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور ان کے بعد وہ فیوچر میں جب ان کے پرماننٹ ٹیتھ آئیں گے تو وہ صحیح ڈھنگ سے آئیں گے، تو ان کا ایئرلائن رہے گا، جو دانت رہیں گے ایک شیپ میں آئیں گے اور ایک ہی اس میں آئیں گے، جو ہوتا ہے کہ کراؤڈڈ ٹیتھ اور مال اوکلوژن ہوگا وہ نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ये पूरे मुंह के लिए काफ़ी, पूरे जबड़े के लिए काफ़ी अच्छा होता है
ठीक है
ये देखभाल करें बचपन से ही, शुरुआत से ही।
ठीक है
तो एक काफ़ी अहम चीज़ है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं
जी जी
1 से 2 साल के लिए,
ठीक है
तो उनमें वो क्या करते हैं कि दूध के जो बोतल होते हैं, बोतल से दूध बहुत सारे माँ बाप देते हैं,
फीडर
तो
जो है जी
वो रात में पीते पीते सो जाते हैं,
ठीक
तो
है
ये बहुत ही गलत होता है। इसको कहते हैं नर्सिंग कैरीज या नर्सिंग बोतल कैरीज या बेबी बोतल कैरीज।
अच्छा
इसमें क्या होता है, दांत खराब होने लगते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं अगर वो मुंह में रख करके बच्चा सो जाता है। इसका उपाय ये है कि जो लास्ट जो फीड करें तो
जी
उसमें पानी भर दें दूध के जगह पे,
हाँ ठीक,
या फिर ब्रश करके सुलाएं,
ठीक
मुंह में
है।
वो करके ना सुलाएं।
अच्छा ये जो आपने कहा कि जो है उसका फीडर जो है, जो बोतल है वो रह जाती है, तो इसका असल मसला डॉक्टर साहब ये दूध से है
दूध से
या
है
वो जो उसकी जो निपल होती है, जो चूसनी जो मुंह में जो बच्चा लेता है उसकी वजह से मसले
नहीं,
पेश है?
इसका जो मसला है दूध से
दूध से,
है, इसीलिए
हाँ
मैंने कहा कि अगर उसको पानी से आप
पानी से,
रिप्लेस कर देते
ठीक है
हैं
ठीक सही
तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है सही ठीक
तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि
ठीक है
बच्चों को मतलब सोने से पहले
ठीक है
दांत को सफा साफ रखें।
ठीक है
दूसरा चीज़ बहुत कॉमन चीज़ होता है बच्चों में कि वो अंगूठा चूसने का,
ठीक है
तो उससे क्या होता है अंगूठा चूसने से कि जो ऊपर वाले दांत होते हैं, तो अगर ये 5 साल तक बच्चे, 5 साल तक अगर ये हैबिट को, लगभग सारे बच्चों में ये होता है कि अंगूठा चूसते हैं,
ठीक है
लेकिन अगर 5 साल तक अगर ये बंद कर दें,
जी
ये इस आदत को वो बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 5 से 6 साल तक के बाद भी अगर कंटिन्यू रखते हैं,
ठीक
क्योंकि
है
6 साल में परमानेंट जो टीथ होती है वो आनी शुरू
वो
हो
आनी
जाती
शुरू हो
है,
जाती सही
तो वो करने से एक ओवर बाइट कहते हैं, जिसमें ओवर बाइट की समस्या इस केस में ज़्यादा होती है कि आगे वाले जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो नीचे वाले दांत को ढकने लगते हैं धीरे धीरे।
ठीक है
तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि अंगूठा चूसें जब भी बच्चे तो उन्हें उसी समय मना करें
ठीक है
नहीं करने से।
ठीक
सिंपल सा तरीका है कि वो अंगूठे पे बैंडेज लगा दें
हाँ
कि
कोई
हैबिट को रोकने
कोई
के लिए,
पट्टी कोई टेप
कोई
टाइप की चीज
पट्टी
कोई
कुछ भी लगा
ठीक
दें।
सही
इसमें भी अगर आदत में नहीं सुधार होता तो फिर अप्लायंसेज होते हैं डेंटिस्ट्री में कि वो
हाँ हाँ सही
अप्लायंसेज लगा देते हैं
जी।
कि बच्चे अंगूठा नहीं चूस सकें
एक
उसको।
फिटिंग सी होती है जो अंगूठे के ऊपर
बिल्कुल
आ जाती है उसके साथ
बिल्कुल
बंद हो जाती है बिल्कुल
बिल्कुल।
सही ठीक है
किसी कारणवश अगर दांत बच्चे के निकल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिकेड टीथ हो जो हो जाते हैं, कीड़े लग गए
जी
और फिर बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गए, तो दांत को जो जगह बचता है बीच में उसे परमानेंट टीथ आने तक छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें स्पेस मेंटेनर लगवाना चाहिए।
ये तो काम बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि वो जब दूध के दांत गिर रहे होते हैं तो वो नए दांत आए जब भी आए वो उसी तरह खाली रहते हैं
लेकिन अगर समय से दूध के दांत गिर जाते हैं तो कोई
वो
प्रॉब्लम नहीं, अगर
नहीं है।
परमानेंट टीथ आने लगे हैं
हाँ
नीचे से
ठीक
तो।
है
अगर नहीं आ रहे परमानेंट टीथ और दूध
ठीक
के दांत पहले गिर गए,
गिर
समय
चुके
से पहले गिर गए,
ठीक है
तो उसमें स्पेस मेंटेनर बहुत जरूरी
हाँ
होता है कि
ठीक
स्पेस को मेंटेन करके रखना, क्योंकि जो दांतों का टेंडेंसी होता है कि वो मूव करना, इधर मतलब जो
हाँ
गैप
सही
जगह रहेगा तो वहां मूव करेंगे और
यानी
उसके वजह से
जी
माल ओक्लूजन हो
सही
जाएगा।
यानी वो जो साथ वाला जो दांत निकल रहा है वो जब देखेगा बगल में जो है जगह खाली है तो वो फैल जाएगा वहां पर टेढ़ा हो जाएगा बिल्कुल
बिल्कुल वो टेढ़ा हो जाता
ठीक
है,
है सही है
तो इस चीज के ख्याल रखना चाहिए कि अगर दांत अगर निकल जाए किसी तरह से तो खराब नहीं होने देना चाहिए।
ठीक है
बहुत हद तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि
जी
हमें केवल ओरल हाइजीन मेंटेन करके
ठीक है
दांतों का और मुंह का
ख्याल है
देखभाल करें।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं दांतों पे बच्चों के, दूध के दांत जिस बच्चे को देखें उसके दांत में जो है कीड़ा लगो, क्या मसले
एक
क्या
कारण तो मैंने भी आपको बताया
जी
कि जो दूध का बोतल
ठीक
मुंह
है
में लेकर के
ठीक है
और वो सो जाते
ठीक
हैं।
है कि वो दूध मुंह में रह जाता है सुबह
हाँ
तक तो वो
बिल्कुल
फिर
बिल्कुल
उसको
बिल्कुल।
ठीक है
फ्रीक्वेंटली जैसे चीनी मिला करके दूध में और ये सब करके नहीं देना चाहिए,
ठीक है
इससे दांत पे बहुत बुरा असर पड़ता है।
ठीक
ये
है
बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो मिल्क जो होता है उसको सिंपलेस्ट शुगर में तब्दील करते हैं और
ठीक
उसके
है
बाद ये दांतों को खराब करना, एक वाइट सा स्पॉट होता है, धीरे धीरे ये ब्राउन होता है फिर
अच्छा
ब्लैक होता है फिर ये
ठीक है
डिकेड होने लगता है
ठीक है
और बाद में जाकर के दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं अगर नहीं ख्याल रखा जाए
ख्याल
तो।
नहीं रखे ठीक
फ्लोराइड टूथपेस्ट में बहुत ही अहम है,
ठीक
बच्चों
है
के टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड की मात्रा और कितनी होनी चाहिए ये जरूरी है। ये इस तरह से एक जब भी बच्चों के दांत आ जाएं तो
ठीक है
धीरे धीरे ब्रश की हैबिट डालनी चाहिए, बचपन से ही डालनी चाहिए
ठीक है
ब्रश की हैबिट और उसको
ठीक
कंटिन्यू रखनी चाहिए बाद में भी,
ठीक है
दो
सही
टाइम ब्रश कर देना चाहिए, जो भी कुछ खाएं तो उसके बाद कुल्ला करा देना
कुल
चाहिए
ठीक है
पानी से, तो
ठीक है
दांतों की सफाई बच्चों के लिए बहुत ही अहम है।
ठीक
मैंने
है
आपको कुछ मैंने अगर आप कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे
जी
तो
जी
मैं उसके
तस्वीर
बारे
जी
में
तस्वीर
डिटेल
बिल्कुल
से
जी जी
बताऊंगा।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे वो ये है कि बच्चों को ब्रश से करवाया जाए उनके दांतों की सफाई या नहीं आप जो है माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं
देखिए, ब्रश से करवाना तो अच्छा इसलिए होता है कि वो कोने कोने तक ब्रश
ठीक
पहुंचेगा,
है
और जो गैप होते हैं बीच में जगह जहां पे भी वो पहुंचेगा। माउथ वाश तो ठीक है, माउथ वाश तो करना चाहिए, बट
ठीक है
ब्रश जो है सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले,
ठीक है
जो नरम रेसे वाले जो होते हैं, उस
ठीक
उन ब्रशों से, वो सख्त नहीं होने चाहिए,
ठीक है
उनसे करना चाहिए
सही है
बस।
ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आगे बात चलाएंगे हम इंशाल्लाह, गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। यहाँ पर जाना है हमने रुबाब के पास। जी
जी
रुबाब,
बहुत शुक्रिया। वक्फे पर जाने से पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहूँ कि निदाए बतूल आबदी साहिबा ने हमें लिखा है, नाइस शो एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को पसंद किया, हमारे चैनल की तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें कमेंट्स करते रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। जी नाजन, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। अली नादर साहब ने यहाँ हमें कमेंट भेजा है, सलाम खुर्रम भाई और रुबाब, वालेकुम अस्सलाम। आज वाकई आप दोनों नूरानी लग रहे हैं और बातें भी नूरानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नूरानी कहने का हमको। और उन्होंने ये लिखा है कि बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो लाइन के बीच में आ जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग अपने लाइन में खड़े होने को अपनी बेइज्जती मानते हैं।
ठीक, हाँ, ये जो इन्होंने मसला बयान किया तो एक बहुत ही अजीब किस्म का मसला है, इसके ऊपर तो
बिल्कुल
पूरी बात की जा सकती है, मुझे याद करवाएगी इस पर बात करेंगे।
लेकिन
वो फारसी में नादिर साहब कहा जाता है कि फारसी को उसका जो तर्जुमा है वो मैं आपको बताऊंगा, कि जब कोई कहता है कि जी आप खूबसूरत लग रहे हो या आपके सूरत से जो है नूर आ रहा है, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि आपकी आंखें जो हैं
अच्छा
वो
देखती हैं,
अच्छा देखती हैं, वो
बिल्कुल
खूबसूरत देखती हैं। तो मैंने मेरे ख्याल में अपना जो मतलब था वो बयान कर दिया है।
बहुत शुक्रिया वैसे
जी,
कमेंट करने का। जी हो
चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी हमारी बच्चों की दांतों की सफाई सुथराई के बारे में, आपने कुछ जो है बातें हमें बताई। अब जो है तस्वीर जो है, अगर हमारे कंट्रोल रूम से तस्वीर जो है डॉक्टर साहब जो लेके आए वो दिखाई जाए हमारे स्क्रीन पे, तो डॉक्टर साहब जो है तस्वीर के बारे में जो है हमें थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, एक नफसियाती तौर पे भी थोड़ा सा बच्चों के साथ मसला होता है कि ये ब्रश से भागते हैं बहुत ही, क्या इसका क्या हल किया जाए?
बिल्कुल, वो ब्रश से या फिर उनको बताया जाता है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा
बहुत
परेशान होते
परेशानी
हैं
होती है,
और डेंटिस्ट को अपना सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन समझते हैं।
बिल्कुल,
ऐसा है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना चाहिए, मतलब ब्रश करना है तो उन्हें अच्छे से बताना चाहिए कि ब्रश करना है, उनको एग्जांपल देना चाहिए, खुद उनके साथ साथ ब्रश करें।
ठीक है,
धीरे, मतलब माँ बाप को ऐसा होता है कि उनको ब्रश करना सिखाएं पहले, शुरू शुरू में ऐसे ना दे दें कि आप जाके ब्रश
ब्रश
करें,
करो
तो पहले मालूम रहे उनको कि कैसे करना, या फिर एग्जाम्पल पेश करें, खुद भी उनके साथ साथ ब्रश करें।
ठीक है, सही। डॉक्टर साहब, तस्वीर जो है आप जो लेके आए थे वो आनी शुरू हो गई है, अब जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के साथ जो है माँ बाप को चाहिए कि वो बैठ के ब्रश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम चीज है कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि माँ बाप शायद खुद एक काम ना करें, लेकिन बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम शायद रात को खुद ब्रश ना करें, लेकिन बच्चे को कहेंगे कि तुम ब्रश करो, ये इसका क्या हल है? ये तो बच्चे तो जारी पता नहीं मानेंगे इस बात को।
बच्चों का वो होता है कि जो आप एग्जांपल सेट करेंगे
बिल्कुल
वो लाइफ में वो वही करेंगे, आपको देख के करेंगे।
ठीक है,
तो ये होता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा एग्जाम्पल पेश करें, अच्छा एग्जाम्पल सेट करें उनके सामने किसी भी चीज़ में, और इस चीज़ में भी है कि हाँ आप ब्रश करें, साथ में करें, उनको दिखाएं कि हाँ कैसे ब्रश करना है, क्या फ़ायदा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए भी ये अच्छा होगा, वो सोचेंगे कि हाँ ये मेरे वो कर रहे हैं मैं भी करूँ। उसके बाद फिर ये होता है कि उनको तरीके से समझाएं, ढंग से समझाएं कि हाँ ऐसे इसका क्या फ़ायदा है।
ठीक है, सही। अच्छा और डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर मसलन ये एक बार हमारा जो है दांतों का ख़राब हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो दांत जो ख़राब हो गए हैं दूध के उसको निकलवा दो, बजाय इसके कि वो दांत में है उसको निकलवा दो, ये ठीक है ऐसा?
नहीं, अगर दांत एकदम बिल्कुल खराब हो गया है
ठीक है,
तो अगर उसको रखना भी नुकसान दे, क्योंकि वो दूसरे अगल बगल के पूरे पूरे मसूड़े को पूरे दूसरे दांतों को भी खराब करेगा, तो अगर डिकेड हो गया है पूरी तरह से तो उसको निकलवा देना चाहिए, नहीं तो फिर अगर बचने लायक कंडीशन है तो पल्पेक्टोमी कहते हैं उसको करा देना चाहिए।
अच्छा,
तो ये है कि दांत अगर खराब हो गए हैं वास्तव में तो उनको निकालवाना जरूरी ही है, बिल्कुल जरूरी है।
यानी जो अगर डॉक्टर्स कहते हैं निकलवा दो तो वो गलत चीज नहीं है,
गलत चीज नहीं है, ठीक निकलवाना है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मसला होता है, बड़ों के साथ भी मसला होता है कि दांतों की पिछली सतह जो है जो बैक साइड है ये हमेशा पीली रह जाती है, ब्रश करना मुश्किल है थोड़ा सा उसमें, कुछ लोग तो नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई नजर नहीं आ रहे तो मसला नहीं है, क्या किया जाए इसका?
करना कोई मुश्किल नहीं है, पीछे साइड में करना बहुत अहम है,
ठीक
और
है?
लोग आगे के दांतों से ज्यादा पीछे के दांतों में करना बहुत ज्यादा जरूरी
ठीक है,
क्योंकि आगे के दांत तो ऐसे भी साफ होते रहते हैं,
ठीक है,
पानी पिए या कुछ पिए तो आगे के दांत ऐसे साफ होते रहते हैं, पीछे के दांतों में भी 45 डिग्री एंगल बना करके और अच्छे से साफ करने का टेक्निक है इसको, साफ करने का, और 2 मिनट तक करें जल्दी फेड अप नहीं हो जाएं कि
अच्छा,
हाँ,
दो मिनट तक ब्रश करना
बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी।
अच्छा, ये तो अपने से अच्छा एक चीज डॉक्टर साहब कही जाती, कहते हैं कि जी आप जो है हर जगह जिस तरफ ब्रश कर रहे हैं, साहब अगर इस तरफ अंदर ब्रश मार रहे हैं तो 20 बार काउंट करें, यानी ये कहते हैं बच्चों का, अगर आपने कहा कि 20 बार इधर काउंट करें फिर 20 बार इस साइड पे 20 बार, तो ये क्या फायदा है इसका कोई?
देखिए ये इसलिए बताया जाता है कि प्रॉपर ब्रशिंग हो जाए, ऐसा नहीं कि 20 बार ही करें,
कोई खास
मतलब कोई खास वो नहीं है कि 20 बार ही करें, लेकिन वो प्रॉपर ब्रशिंग हो जाए इसलिए बोला जाता है। एक होता है कि मींस जो टूथब्रश होता है 2 मिनट पे सेट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश ले लें,
ठीक है,
अगर ऐसे नहीं तो 2 मिनट पे उसको सेट कर, 2 मिनट के बाद 2 मिनट तक वो ब्रशिंग हो जाएगा आपका अच्छे से,
सही,
तो ज्यादा बेटर है।
बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस पे जो है इंशाल्लाह बात करेंगे कि इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। यहाँ पर जाने हमने रुबाब के पास, रुबाब भी कुछ हमारे लिए चीजें लेके
बहुत शुक्रिया खुरम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मेरा भी जो मौजू आज का है वो आपके मौजू से काफी नजदीक बल्कि तकरीबन एक जैसा ही है। मैं आज डिखे दूध के बारे में या खराब दांतों के बारे में या कीड़े लगे दांतों के बारे में हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, बच्चों में अक्सर ये देखा गया, जैसा आप देख रहे हैं, कहते हैं कि जो दांत, जो बच्चे का पहला दांत जब निकले तो आप उसी वक्त बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, कि क्योंकि बच्चे को ये होता है कि डॉक्टर उसके दांत की जो क्वालिटी होती है वो समझ सके कि किस तरह की क्वालिटी बच्चे के दांत की है, ताकि उसी मुताबिक उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा सके। फिर नाज़रीन एक और बात है कि आप बच्चे जब आपके स्टिकी च्युइंगम्स खाते हैं, च्युइंगम्स हो गए, लॉलीपॉप्स हो गए, या चूसने वाली कोई भी ऐसी जो स्वीट वो खा रहे हैं, उनको खिलाने के बाद फौरन बच्चे को आप मजबूर कीजिए कि ताकि अपने दांतों को वो कुल्ली कर ले, जो हम बोलते हैं गरारे कर ले, या फिर वो ब्रश कर ले, तो बहुत बेहतर है, उसके दांत जो ख़राब होने से या कीड़े लगने से बच सकते हैं। और जो हम बीच बीच में जो बाहर की जो बच्चों को खाने देते हैं, चिप्स हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या कुछ भी इस तरह के बिस्किट वगैरह, उसके बाद भी ये अमल जारी रखिए। फिर कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि बच्चे जो छोटे होते हैं या जो नवजात बच्चे होते हैं, हम उनको मुँह में दूध की बोतल दे के सुला देते हैं, ये काम बिल्कुल ना कीजिए। आखिरी जो चीज़ अपने बच्चे को आप दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे, आप उनको ब्रश नहीं कर सकते, उन बच्चों को आप आखिरी चीज़ जो दे रहे हैं वो आप ये दीजिए कि दूध की जो बॉटल में है वो पानी उबला भर के दे दीजिए, ताकि उसकी मुंह की धुलाई अच्छी तरह अंदर से हो जाए। फिर नाज़रीन हमारे पास ये है कि कैफीन जिसमें हो, जैसा चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या जूसेस किस तरह के जिसमें आपको पता है कि कैफीन मौजूद है, उसके बाद भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि बच्चों को माउथ वॉश फौरन दिया जाए, या टूथब्रश उनको कराया जाए, या फिर से उनकी वही कुल्ली कराई जाए। ओरल हाइजीन, जो कि हमारा आज का मौजू भी ओरल हाइजीन है, इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि अपने दांतों को हर 6 महीने में एक बार सफाई करवाइए, या डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, डेंटिस्ट के पास जाके। और फिर आप अपने घर में तो खैर 2 बार हमेशा ब्रश कीजिए, और डेंटल फ्लॉस का भी हमेशा हमेशा इस्तेमाल रखिए, क्योंकि डेंटल फ्लॉस में जो दांत के बीच में फंसे हुए जो खाने या जो चीज़ें चली जाती हैं, जो ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, काफ़ी हद तक मदद करती है। फ्लोराइड टूथपेस्ट, डॉक्टर साहब ने भी कहा, फ्लोराइड टूथपेस्ट का खास तौर पर आप ख्याल रखिए कि आप फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो दांत में जो कीड़े वगैरह जो होते हैं उनको बचाता है, और आपकी स्माइल उम्मीद करते हैं इस तरह खूबसूरत और प्यारी सी हो जाएगी। और फिर नाज़रीन आखिरी बात जो है, बच्चों को, जो बच्चे जिनको खुदा ना खासा अस्थमा का प्रॉब्लम हो, जिनको हम वो पम्प्स देते हैं अस्थमा वाले, उसके बाद भी, उसके इस्तेमाल के बाद भी बच्चों के दांत को ज़रूर ज़रूर ब्रश करवाइए, या फिर आप उनको कोई दवाई दे रहे हैं जैसा फ्लू की दवाई होगी, बुखार की दवाई होगी, क्योंकि ख़ास मिकदार की उसमें शुगर मौजूद होती है, उसके बाद ही बच्चों को ज़रूर आप तो पानी पिलाइए या उनकी मुँह की पूरी कुल्ली करवाइए, क्योंकि वो शुगर कहीं ऐसा ना हो दांतों को किसी तरह से नुकसान पहुँचाए। जी नाज़रीन ये तो कुछ दांतों की बातें थी, इस वक्फे के बाद कुछ खाने पीने की बातें करेंगे। जी नाज़रीन को दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, अब कुछ बात करते हैं खाने पीने की, कुछ खट्टी मीठी सी बातें सी हो जाएं। जी नाज़रीन आज का जो मेरा खाने पीने का मौजू है वो है ग्रेप फ्रूट के बारे में, इसका मौसम भी है, हमने सोचा इस बारे में बात कर लें। जी कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट आपको पतला रखने में या आपको स्मार्ट रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है, आपके इंसुलिन लेवल को वो नीचे ले आता है। हर ग्रेप फ्रूट के अंदर पर 100 ग्राम में 32% कैलोरीज होती हैं, जो काफ़ी हद तक कम है और आपको मोटापे से दूर रखती हैं। ग्रेप फ्रूट वो तन्हा वाहिद फल है जो बहुत देर से यानी ख़राब होता है या सड़ता है, तो उसकी यानी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 3 महीने तक आप उसको रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में अपने संभाल सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं सड़ेगा, और रूम टेम्परेचर के अंदर आप उसको तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक संभाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी और फिर एक और ये है कि आपके जितने भी दिल की बीमारियाँ हैं, ग्रेप फ्रूट आपको उनसे बचाता है। इसमें ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो आपके सेल्स, जो खून के अंदर सेल्स होते हैं, ये उनको तवानाई बख्शता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। फिर हमारे पास जो आता है जी ग्रेप फ्रूट का एक और है कि कैंसर से भी कहते हैं कैंसर के लिए एक बहुत बड़ी बदवा साबित हुआ है, ये जिस तरह लिखा हुआ था मैं उसी तरह पढ़ रही हूँ। इसमें खास किस्म के केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वाइटामिन ए जो होता है वो आपको ओरल कैविटी कैंसर यानी मुंह का जो कैंसर है और लंग कैंसर से काफ़ी हद तक यानी बचाता है। फिर एक और जो है वाइटामिन ए, इसके अंदर जो मौजूद है ये आपकी आंखों की जो बीनाई है उसको काफ़ी हद तक यानी ये ताकतवर या यानी काफ़ी ताकतवर करता है और काफ़ी हद तक आंखों के लिए मुफीद है। कहते हैं कि जितने भी इन्फेक्शनस बीमारियां होती हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक मुफीद साबित होता है, अब चाहे वो पेट की बीमारियां हो या स्किन की, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपकी मदद करता है। फिर कहते हैं कि ग्रेपफ्रूट का जो जूस वगैरह आप पिएं तो उसमें भी काफ़ी किस्म की एनर्जीज होती हैं जो आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं यानी अस्थमा अगर आपको है या कोल्ड या नज़ले ज़ुकाम की वजह से आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, आप ग्रेपफ्रूट खाइए, आपको यानी काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। फिर जिनको किडनी की जो पथरी का जो मसला है यानी गुर्दे में जो पथरी का मसला है, इसमें वाइटामिन सी यानी भरी हुई है और ये काफ़ी हद तक उसमें आपको आराम पहुँचाता है। और नेचुरल सप्लीमेंट है यानी कुदरती तौर पर इसमें इतने मिनरल्स मौजूद हैं कि एक ग्रेपफ्रूट आपको तमाम मिनरल्स यानी आपके जो जिस्म के है वो पूरा करता है। ये तो हो गई कुछ खाने पीने की बातें, अब चलते हैं खोरम की तरफ। जी
बहुत बहुत शुक्रिया इत्वाकन, मैं भी कल और परसों जब परसों प्रोग्राम जब किया था तो मैं माल्टे और उसके छिलकों के बारे में और उसके बारे में बात कर रहा था। ये जो पूरी इनका खानदान है माल्टा सिट्रस जो खानदान है ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का खानदान है, खासतौर पर ये छोटी मोटी बीमारियों में नज़ला ज़ुकाम बुखार इनमें बहुत। डॉक्टर साहब इलेक्ट्रॉनिक टूथपेस्ट की टूथब्रश की बात हुई है और उसमें क्या फ़ायदा है उसका?
एक तो ये है कि आपका कोई खास नहीं, अगर आप नॉर्मल टूथब्रश भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उतना ही कारगर होता है, बट ये होता है कि आपको टाइम का पता चलता है कि हाँ हमने इतने देर ब्रश कर लिया। बहुत लोग एक मिनट ब्रश करते हैं, 30 सेकंड भी ब्रश करके छोड़ देते हैं,
ठीक है,
तो 2 मिनट कम से कम ब्रश उस पर सेट कर लेना होता है और अच्छी तरह से वो होता है कि जगह जगह पर पहुँच जाता है, कोने कोने तक पहुँच करके अच्छी तरह से सफाई कर देता है।
डॉक्टर साहब खुद घूम रहा होता है उसका जो हेड जो है,
बिल्कुल
उसका एक किस्म का डबल फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब आम ब्रश से जब ब्रश कर रहे हैं तो वो एक यूनि डायरेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ अगर यूनि डायरेक्शन में वो घूम भी रहा है तो वो जारी बात है वो ज्यादा सफाई कर।
ऐसा है कि अगर आपको सही ब्रश टेक्निक अगर मालूम हो तो आप नॉर्मल ब्रश हो उससे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके रेसे जो हो वो नर्म हो, कि उस पर कोई दबाव ना पड़े, और दांतों पर ही नहीं मसूड़ों पर भी हल्के हल्के से उससे वो करना जरूरी है।
मेरा यही अगला सवाल मेरा यही था कि जो मसूड़ों पे कुछ लोग कहते हैं कि आप हल्का हल्का जो है मसूड़ों पे भी ब्रश मार, बच्चों के सिलसिले में भी ये काम किया जाए या नहीं?
देखिए बच्चों के सिलसिले में ज़्यादातर तो ये होता है कि जब बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो अगर आप ब्रश नहीं करते तो आप साफ़ कपड़े से लेकर के उन्हें पोंछ दिया करें, अच्छे से साफ़ कर दिया करें। ब्रश करना हो तो उनके बच्चों के लिए अलग ब्रश आता है, टूथब्रश आता है, तो वो उस ब्रश से करें धीरे धीरे,
खास ब्रश जो है
और वो प्रेशर ना पड़े उस पर,
प्रेशर ना पड़े। अच्छा सर डॉक्टर, टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाता है फ्लॉस की जगह हमारे यहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि टूथपिक जो वो है,
टूथपिक यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। टूथपिक का ये डिसएडवांटेज है कि वो ज़्यादा गैप फॉर्म कर देता है दो दांतों के बीच में, अगर टूथपिक यूज़ करते हैं तो गैप फॉर्म करता है।
अच्छा,
लेकिन अगर फ्लॉस यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से सफाई भी हो जाता है दांतों के बीच का,
ठीक है,
और वो काफ़ी अहम है। कुछ लोग हफ्ते में एक बार फ्लॉस कर लेते हैं,
ठीक है,
लेकिन फ्लॉस को भी डेली यूज़ करना चाहिए।
सही, ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद नुकात के ऊपर आपने जो है आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे नाज़रीन के लिए बात की, इंशाल्लाह जो है हमारे नाज़रीन को भी उनके लिए भी मुफीद साबित हुई होगी। बहरहाल आपको शुक्रिया अदा करते हैं और अभी वक्त हुआ है कि आपसे हम खुदा वसी करें, बहुत शुक्रिया।
ओके शुक्रिया,
मैं भी यहाँ पर डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने बहुत मुफीद गुफ्तगू और बच्चों के मसाइल के बारे में जो दांतों के होते
हैं। क्या देखने जा रहे हैं
जी? अभी यहाँ पर हम एक वीडियो क्लिप देखना है और फिर अपनी नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं। फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, अब वक्त हुआ है मेरा इस तरफ चलने का, जी खुर्रम भाई की तरफ चलने का। खुर्रम भाई आज मैं आपको खुशखबरी देती चलूँ कि हमारे नाज़रीन जो थे वो वापस आ गए हैं और बहुत से कमेंट्स हमारे पास आए हैं। इकबाल मौलाना हैदर साहब ने लिखा है, सबर का बेहतरीन जुमला, सबर और इस्तकामत कामयाबी का सरमाया और मुश्किलात पर गलबा का राज है।
ठीक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है कि जो इस्तकामत है, साबित कदमी है और इंसान जो है एक जगह डट जाता है ना, ये बहुत अहम चीज़ है। मसलन बेसब्रा नहीं होना चाहिए इंसान को, अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई आपका एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं हो रहा तो वह डट के उस पर जो है खड़े हो जाएं वहाँ पर और ज़ोर लगाएं, बार बार कोशिश करें, तो ये सब्र की तो मिसाल है, वरना आपकी जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
एक और हमारे पास जो है हुसैन वाजिद अली साहब ने हमें कमेंट भेजा है, सलाम, क्या हमें तमाम कामों में, ज़िंदगी के तमाम कामों में सब्र करना चाहिए या नहीं? तो ये सवाल अपने कॉलर से हम पूछते हैं जो हमारे साथ मेरे हाथ से लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम, मैं आबिदा जैदी बात कर रही हूँ
जी। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। और कैसी हैं आप?
जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप मौजूद आपका बड़ा अच्छा है
जी, बहुत
सवाल आपने क्या किया, दोबारा दोहराइएगा जरा।
सवाल हमारे को हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, हुसैन वाजिद अली साहब ने, कि क्या हमें जिंदगी के तमाम कामों में सब्र करना चाहिए या नहीं?
जी बिल्कुल सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा कि इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, वो सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा वो नमाज पढ़ने वालों के साथ है, रोजा रखने वालों के साथ है, ज़कात देने वालों के साथ, क्योंकि सब्र एक बहुत मुश्किल काम है। और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि सब्र का फल जो कहते हैं ना मीठा होता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमें हम बहुत सारी हमारी जायज दुआएं होती हैं, हकीकी दुआएं होती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए सब्र के साथ कि शायद अभी इसका वक्त नहीं आया, या अल्लाह ताला ने इससे कोई बेहतर चीज हमारे लिए रखी है तो थोड़ी सी देर हो रही है। सब्र बहुत मुश्किल काम है। ये तीन जो लफ्ज है, स्वाद, बे, रे, सब्र, ये मुश्किल काम है। जो करता है ना उसी को पता होता है कि इसने कितना मुश्किल काम किया है। लेकिन जब हम अपने आइम्मा को देखते हैं तो ऐसा सब्र तो शायद कोई भी नहीं कर सका।
बिल्कुल
बिल्कुल। आबिदा साहिबा, आपसे हमेशा जब भी बात की जाती है तो मेरे दोबारा मेरे इल्म में बड़ा इजाफा होता है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम है। वो ये है कि आबिदा साहिबा, अक्सर ये होता है कि इंसान मुश्किलात में घिर जाता है, बीमारियों में घिर जाता है, ठीक नहीं हो पा रहा होता, मुश्किलें उसकी हल नहीं हो पा रही होती, आहिस्ता आहिस्ता नाशुकरा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोसना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका सब्र जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे हालात में क्या किया जाए?
ऐसे हालात में हमें कुरान पढ़ना चाहिए। देखिए हम खुद भी एक ऐसे मसले से गुजर रहे हैं। मेरी बेटी का जो बेटा है वो पैदाइशी तौर पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है, और उसकी स्पीच बड़ी मुश्किल से वो बोल पाता है, लेकिन हमने सब्र का दामन हाथ नहीं छोड़ा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, उसको स्पीच, उसको जुमला उससे बुलवाना, उससे कहलवाना, ये सब आजमा मरहला था। 2.5 साल में हम इतने कामयाब हुए हैं कि यानी हमारे जो महल्ले के लोग हैं वो कहने लगे हैं कि बच्चे में बड़ी तब्दीली आ रही है। स्कूल से यकीन करें निकाल दिया जाता था, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था, अब माशाल्लाह स्कूल में भी पढ़ा है, क्लास 1 में आ गया। ऐसे में हमें कुरान से जो है ना लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। और जब हम
जी आबिदा साहिबा, ये बड़ी आपने जो है बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि ये जो परेशानी जो आप लोगों के साथ पेश आई, और हम सब यहाँ पर मिलकर दुआ करते हैं कि आपका नवासा जो है वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, अभी भी ठीक है लेकिन और बेहतर हो जाए। ये कैसे आपने आबिदा साहिबा सब्र की? ये हर शख्स, हर इंसान जो है ये सब्र नहीं कर पाता,
खासकर वो माँ जो थी, जो माँ के लिए सब्र बहुत सख्त है।
मेरी बेटी भी डॉक्टर है और वो फिर उस बच्चे को लेके कई जगह स्पीच थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी और इस तरह की चीजें ली। फिर मैंने भी उसको, अच्छा मैंने अभी हालिया दिनों में, मैं अपने तजर्बा शेयर करूं, बस एक मेरी आदत है, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, कि मुझे किसी चीज से फायदा होता है तो मैं वो हर एक को बताती हूँ कि भाई सबको फायदा हो जाए।
अच्छा
मैं आंखों पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ा करती थी फर्ज नमाज के बाद हाफजे के लिए। अब हाफजा तो सही हुआ या नहीं हुआ क्योंकि ये याद ही नहीं रहता कि पढ़ने मंगवाने हैं,
नहीं नहीं बहुत अच्छा,
उससे ये फायदा हुआ कि मेरी आंखों में जो कोई मोतिया का जो शुरू हो गया था वो सब खत्म हो गया, मेरा चश्मा भी उतर गया, और बहुत बारीक के लिए मैं चश्मा लगाती हूँ, वरना मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे ख्याल आया कि बड़ा आजकल घुटनों में दर्द, हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा ही बीमारी आम है खवातीन में, तो मैंने कहा भी ऐसा करें कि घुटनों पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करें। वाकई कई लोगों को फायदा हुआ, खुद मुझे भी फायदा हुआ। तो मैंने फिर ये इसका एक हल ये भी निकाला, मैंने कहा कि रात को या सुबह या दोपहर जिस वक्त भी, दिन में 3 दफा 4 मरतबा जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो, बच्चे के सर पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी और आयत शिफा जो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 ये पढ़ ली जाए, तो यकीनन 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसको जरूर शिफा होगी। तो हमने बहुत सब्र आजमा दौर गुजारा बच्चे का, उसको उसकी पढ़ाई, उसको पढ़ाना, उसको मुश्किल भी होती थी, कभी बेटी हमारी डांटती भी थी, मारती भी थी, लेकिन बहरहाल हम लोग 70% इतने अरीजे भेजे हमने इमाम हुसैन के रोजे पर, अभी भी एक अरीजा शबे जुमा में आशूरा में भेजा है, लेकिन बहरहाल हमने 70% तो कामयाबी हुई है, मतलब बच्चा बोलने भी लगा है और लिखने पढ़ने भी लगा है, अब तो टेबल भी याद करता है, सब उर्दू भी
अल्लाह का यहाँ पे बहुत बहुत हम शुक्र अदा करेंगे
जी।
और आबिदा साहबा, बहुत माजरत के साथ हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपने जो तजुर्बे आपके थे आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा साहबा।
बिल्कुल बहुत शुक्रिया
जी, बहुत शुक्रिया
जी।
यहाँ पे खुर्रम हमें साथी बता रहे हैं कि हमें ब्रेक लेना है और फिर उसके बाद अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं। جی ناظرین کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور جی خرم کل کے موضوع کے بارے میں
بالکل میں کل کا موضوع بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو. ڈاکٹر مترا قاری صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی, اور جیسے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر مترا قاری جو ہیں وہ ہمارا جو ہفتے کا موضوع ہوتا ہے اس کے نتائج اور اس کے بارے میں جو ہے اس کو نتیجے تک پہنچاتی ہیں. تو ان سے جو ہے نفسیات کے طرف سے جو ہے اس موضوع پہ صبر کے موضوع پہ ان سے ہم بات کریں گے.
جی بہت شکریہ خرم, اور جس طرح کے ناظرین ہمارا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے, اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پہ پہنچائیں گے کہ یا آپ کے خوشی کے جو لمحے ہیں, یہ جو آپ کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ ہے, خدا کرے کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوبصورت اور پیارے پیارے لمحے آتے رہیں.
بالکل جی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج کا دن ہمیشہ سارے دنوں کی طرح انرجی سے بھرا ہوا, منفی سوچ جو ہے اپنے ذہن میں بالکل نہ آنے دیں. صرف اگر کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ مثبت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ باعث بنے گی کہ آپ کا پورا دن بہت اچھا انرجی سے بھرا ہوا پاک صاف ستھرا گزرے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور رباب کو پروگرام صبح زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.